पुस्तक सामर्थ्य के साथ सुसमाचार की घोषणा करना, लेखक रॉबर्ट प्रकाश, अध्याय दो, आपकी मजबूत बुनियाद। एक ऐसा मॉडल प्रारूप जिसका अंत पूरी तरह से हो चुका है। पुराने नियम के दिनों में हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा अभिषेक किसी विशेष और मकसद को पूरा करने के लिए परमेश्वर के कुछ चुने हुए लोगों पर आता उतरता था। पवित्र आत्मा प्रायः याजकों, भविष्यताओं और राजाओं पर ही उतरता था, और यही लोग पवित्र आत्मा से भरकर इस्तेमाल होते थे। पवित्र आत्मा के इस पाक अभिषेक से भरकर इस्तेमाल होने का सौभाग्य अन्य किसी को प्राप्त नहीं हो पाता था। परमेश्वर के अभिषिक्त लोग और साधारण यहूदियों के बीच जो अंतर था वह बहुत बड़ा था। परमेश्वर के लोगों का पूरा देश उस अनुग्रह पर निर्भर रहता था जो कि कुछ गिने चुने विशेष लोगों पर बना रहता था। हालांकि समय बदल गया है और अब हम एक नए वाचा के नीचे अधीन हैं, परंतु फिर भी ज्यादातर कलीसिया अभी भी पुराने नियम की मानसिकता की गिरफ्त में है, जो कि यह आदेश देती है कि अभिषेक, चमत्कार और आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य, बीमारों को चंगा करना और दुष्ट आत्माओं को निकालना आदि सिर्फ गिने चुने परिपक्त और विशेष सेवक ही कर सकते हैं। जब तक हम मन ना फिराएं और सुसमाचार पर विश्वास ना करें, मरकुस 1:15, और वाचा की नई दाखरस को नई मशकों में ना भरें, मरकुस 2:21-22, तब तक हम पुरानी वाचा की इन बंदिशों में ही जीवन जीते रहेंगे। आइए सबसे पहले हम इस बड़े अंतर को यर्मिया 31:31-34 में पढ़ें और फिर हम नीचे बने चार्ट को देखेंगे। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान नहीं होगी जो मैंने उसके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। तब उन्हें एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। पुरानी वाचा से नई वाचा की तुलना करने का चार्ट। पुरानी वाचा, पहला बिंदु, भविष्यवक्ता, याजक और राजा परमेश्वर के लोगों के लिए मध्यस्थ थे। परमेश्वर के लोगों को निर्देश दिया जाता था। परमेश्वर की अगुवाई, दिशा निर्देश, सामर्थ और छुटकारे के लिए वे भविष्यवक्ता, याजक और राजाओं पर आस लगाएं। नई वाचा, पहला बिंदु, मनुष्य और परमेश्वर के मध्य यीशु मसीह ही केवल एकमात्र अकेला मध्यस्थ अथवा बिचवई है। हम परमेश्वर के दिशा निर्देशन, सामर्थ और छुटकारे के लिए सीधे सीधे परमेश्वर की ओर देख सकते हैं। पुरानी वाचा, दूसरा बिंदु, परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं या नबियों से बात करता था और उनके द्वारा अपना संदेश अपने लोगों तक पहुंचाता था। नई वाचा, दूसरा बिंदु, परमेश्वर सभी विश्वासियों से बात करता है और सभी विश्वासियों के द्वारा भी बात करता है। पुरानी वाचा, तीसरा बिंदु, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के सेवक और दासी के रूप में पहचाना जाता था। नई वाचा, तीसरा बिंदु, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में जाना जाता है। पुरानी वाचा, चौथा बिंदु, परमेश्वर की आत्मा कुछ गिने चुने लोगों पर विशेष मकसद के लिए उतरती थी। नई वाचा, चौथा बिंदु, परमेश्वर की आत्मा सभी विश्वासियों के भीतर वास करती है और उसका एक ही विश्वव्यापी कार्य है। पुरानी वाचा, पांचवा बिंदु, आप अभिषिक्त थे या नहीं यह आपकी बुलाहट से पता चलता था। नई वाचा, पांचवा बिंदु, अभिषेक सभी विश्वासियों के अंदर बना रहता है। पहला यूहन्ना 2:20-27। पुरानी वाचा, छठवां बिंदु, भविष्यवक्ता, याजक और राजा आबादी का बहुत छोटा हिस्सा थे, तादाद में बहुत कम होते थे। यह एक बहुत ही सौभाग्यशाली पद था जिसे कोई भी अपनी इच्छा से नहीं चुन सकता था। नई वाचा छठवां बिंदु, सभी विश्वासी याजक और राजा हैं। प्रकाशित वाक्य 5:10, जिन पर अनुग्रह हुआ है कि इस जीवन में बीमारी और दुष्ट आत्माओं पर राज्य करें। रोमियो 5:17, सभी विश्वासियों पर अनुग्रह हुआ है कि वे भविष्यवाणी कर सकें। 1 कुरिन्थियों 14:31, 1 पत्रस 4:11। पुरानी वाचा 7वां बिंदु, सिर्फ भविष्यवक्ता नबी ही वे चुने हुए पात्र थे जिनके द्वारा परमेश्वर चमत्कार और आश्चर्यकर्म प्रकट करता था। नई वाचा 7वां बिंदु, सभी विश्वासियों को बड़े बड़े काम, चमत्कार और आश्चर्यकर्म प्रकट करने का अधिकार और सामर्थ्य प्राप्त है, जैसे कि बीमारों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना आदि। मरकुस 16:17-18। हमें पुराने नियम के किसी भविष्यवक्ता, नबी की बुलाहट और अभिषेक का लालच, लालसा नहीं करना चाहिए। हमें मूसा, दाऊद और एलिया के समान सेवकाई करने की चाह या कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज बहुत से लोग एलिया के दुगने अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मित्रों, हम नई वाचा के विश्वासी हैं और हमें उन सबसे अधिक बड़ा सौभाग्य और पद मिला है। मत्ती 11:11, हम एक अद्भुत मिश्रण हैं, भविष्यवक्ता, याजक और राजा भी हैं। हमें चाह होनी चाहिए सिर्फ यीशु के समान बनने की, और हमें यीशु के समान बनने की कोशिश करनी चाहिए, अर्थात उसके अभिषेक और आत्मा से चलना, उसका सचरित्र होना और उसके समान ही हमें सेवा करनी चाहिए। यदि 5 प्रकार की सेवकाई में से कोई भी एक सेवकाई आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको भविष्यवक्ता, याजक और राजा का विशेष पद मिल गया है, क्योंकि यह सौभाग्य और पदवी तो हमें यीशु पर विश्वास करने से प्राप्त होती है। 5 प्रकार की सेवकाई को कलीसिया के लिए परमेश्वर ने इसलिए बनाया, रचा है, ताकि हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर ने जो अभिषेक दिया है, उस अभिषेक का इस्तेमाल दूसरों को तैयार और प्रशिक्षित करने के लिए किया जाए। यह अभिषेक 5 प्रकार की सेवकाई करने के द्वारा इस्तेमाल हो एवं बाहर आ सके। हर एक विश्वासी परमेश्वर के अनुग्रह और वरदानों के साथ इस्तेमाल हो सकता है। ये वरदान और अनुग्रह एक बीज के समान ही एक विश्वासी के अंदर पाया जाता है, और 5 प्रकार की सेवकाई के द्वारा ये वरदान जो कि अंदर पाए जाते हैं उभर कर सामने आते और प्रकट होते हैं। दोस्तों, पवित्र आत्मा सबसे महान अभिषेक और वरदान है, वह आपके अंदर मौजूद है। एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक विश्वासी एक भविष्यवक्ता नबी भी है। हालांकि हम यहाँ 5 प्रकार की सेवकाई में भविष्यवक्ता, नबी के पद, बुलाहट और सेवकाई को एक अलग सेवकाई के रूप में देखते हैं। ध्यान दें, 5 प्रकार की सेवकाई में से भविष्यवक्ता, नबी की सेवकाई करने वाला अकेला ही ऐसा नहीं है कि भविष्यवाणी, नबुवत कर सके, परंतु पौलुस सभी विश्वासियों को उभारते हैं कि सभी विश्वासी भविष्यवाणी करने के धुन में लगे रहें। 1 कुरिन्थियों 14:1-39, क्योंकि सभी भविष्यवाणी करने का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात सभी भविष्यवाणी कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 14:31, नई वाचा का भविष्यवक्ता परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए अपने कान को लगाए, ताकि परमेश्वर जो कहता है उस बात को वह कलीसिया को सिखा सके, और कलीसिया को परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए प्रशिक्षित तैयार करे, और कलीसिया को यह भी सिखाए कि परमेश्वर की आवाज़ को कैसे पहचाना जाता है, भविष्यवाणी को कैसे परखा जाता है, और उन्हें भविष्यवाणी करने के लिए तैयार करे। हर एक विश्वासी के पास भविष्यवक्ता के रूप में सेवकाई करने की क्षमता, काबिलियत, योग्यता होती है। सबसे पहले भविष्यवक्ता लोगों को तैयार एवं प्रशिक्षित करे, फिर कलीसिया नबुवत अर्थात भविष्यवाणी की सेवकाई करे। यदि कलीसिया में ऐसा भविष्यवक्ता है जो कि केवल खुद भविष्यवाणी करता है, तो इसका मतलब यह है कि वह अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर रहा है। विश्वासी के पद, पदवी और कार्य की परिभाषा। आइए विश्वासी की परिभाषा समझते हैं। साधारण शब्दों में विश्वासी वह होता है जो कि यीशु के विश्वास में आज्ञाकारी और वफादार विश्वास योग्य होता है, जबकि चेला एक वफादार विश्वासी होता है जो कि बड़ी ही निष्ठा वफादारी से अपने विश्वास के प्रति प्रतिबद्ध होता है और पालन करता है और उसके अनुसार एक कार्यकर्ता जीवन बिताता है। वफादार विश्वासी चेला ही वह योग्यता है जिसे पौलुस खोजता है ताकि दूसरों को तैयार एवं प्रशिक्षित किया जा सके। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वास योग्य मनुष्य को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। दूसरा तिमुथियुस 2:2। वे कौन सी बातें हैं जिसके विषय में पौलुस तिमुथियुस से कह रहा है तू तिमुथियुस ने मुझसे पौलुस से सुनी है। यदि इन बातों को पौलुस तुरंत दूसरों को सौंपने के लिए तिमुथियुस से कह रहा है तो निश्चय ही ये बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। हमें यह समझना जरूरी है कि प्रेरित पौलुस की शिक्षा बिना सामर्थ्य चमत्कारों और बिना पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण के नहीं थी। पौलुस ने जो बातें विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंपने का निर्देश तिमुथियुस को दिया है वे बातें महज कोई साधारण शिक्षा नहीं है परंतु सामर्थ्य के साथ अपनी अभिव्यक्ति करने वाला सुसमाचार है। प्रेरित पौलुस का यह विश्वास था कि यह सामर्थ्य के साथ प्रकट होने वाला एक सुसमाचार पौलुस में से तिमुथियुस में हस्तांतरण होगा या जाएगा और तिमुथियुस से विश्वास योग्य मनुष्यों में हस्तांतरित होगा और उन विश्वास योग्य मनुष्यों में से अन्य लोगों तक हस्तांतरित होगा। निम्नलिखित पदों पर ध्यान दें और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। 1 कुरिन्थियों 2:4-5। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। 1:16। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। 1 थिस्सलुनीकियों 1:5। इस पुस्तक में मैं खास तौर से उन 3 सेवकाई पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जो कि अधिकतर समय यीशु, उसके चेले और प्रेरित जन किया करते थे। सुसमाचार प्रचार करना, बीमारों को चंगा करना और दुष्ट आत्माओं को निकालना। सुसमाचार प्रचार करना, बीमारों को चंगा करना और दुष्ट आत्माओं को निकालने का आदेश, आज्ञा सभी चेलों और विश्वासियों को दिया गया है। यह बहुत जरूरी है कि आप इसके प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं। वचन में यह बातें साफ साफ लिखी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान इन बात पर विश्वास करने से आपको रोककर आपकी और दूसरों की क्षमता, काबिलियत को इस काम को करने से रोकने में सफल हो जाए। आपके अंदर इन 3 कार्यों, सेवकाई को करने की क्षमता, योग्यता जो परमेश्वर ने दी है, उसे इस्तेमाल करने से शैतान आपको रोकने ना पाए। इस स्थान को चिन्हित कर लीजिए। वचन के इन पदों पर मनन करते रहें। लिखकर इन पदों को घर में किसी मुख्य स्थान पर रख लें या चिपका दें ताकि आप उसे पढ़कर उस क्षमता, काबिलियत की घोषणा बार बार कर सकें जो परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार, बीमारों की चंगाई और दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए आपको दी है। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। 10:1-7-8। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और उन्हें यह कहकर भेजा, जिस नगर में जाओ वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में। और उसने उनसे कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। 10:1-7-8 और 17 से 19, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। विश्वास करने वालों में से चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मरकुस 16:15-17-18। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। मरकुस 11:23। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। यूहन्ना 7:38-39। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यूहन्ना 14:12। यीशु ने उनसे कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस 9:23। अक्सर लोग सोचते हैं कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए और दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए एक विशेष बुलाहट होती है, परंतु यह सत्य नहीं है। हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने यह तीनों कार्य और सेवकाई ठहराई है। यह अनुग्रह, सामर्थ और पवित्र आदेश हर एक उस विश्वासी को दिया गया है कि जो यीशु मसीह के समान बनने की इच्छा और चाहत रखता है। सुसमाचार प्रचार करने, बीमारों को चंगा करने और दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए किसी प्रकार के धर्म विज्ञान की उपाधि या डिग्री, भविष्यवाणी, नबुवत के वचन या फिर किसी विशेष सुसमाचारिक अभिषेक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको महज यीशु पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। ऐसी गवाहियां जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। मेरी साली का नाम आराधना है और गर्मी की छुट्टियों के दौरान हमने उन्हें अपने उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होने जा रही सभाओं में आमंत्रित किया। उसके अंदर प्रभु और प्रभु की बातों की भूख पाई जाती थी, और प्रायः जब वह हमारी सभाओं में आती थी तो वह प्रभु की आत्मा के चलन और चमत्कारों को प्रकट होते हुए देखती थी। उसने लगातार मुझे यह कहते और लोगों को सिखाते हुए सुना कि सभी विश्वासियों को प्रभु ने सामर्थ के साथ सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया है, और प्रभु सभी विश्वासियों के लिए यह इच्छा रखता है कि वे इस कार्य के लिए तैयार किए जाएं। इन बातों से वह प्रोत्साहित हुई, और थोड़े से समय में ही वह क्षमता, काबिलियत जो प्रभु ने उसके अंदर दी थी, वह खुलकर सामने आने लगी। आराधना एक प्राथमिक विद्यालय में टीचर है। जब विद्यालय का नया सत्र शुरू हुआ तो उसने नए छात्रों को दाखिल लिया। आराधना ने ध्यानपूर्वक देखा तो उससे पता चला कि कई बच्चे इन नए दाखिला पाए बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। उसने उन बच्चों से पूछा कि तुम इस नए दाखिला लिए हुए बच्चों का मजाक क्यों उड़ा रहे हो और उस पर क्यों हंस रहे हो। तो उस कुछ बच्चों ने उत्तर दिया कि यह लड़का बेवकूफ़ है और इसकी समझ में कुछ भी नहीं आता है। इसके बाद आराधना को दिखाई दिया कि उस बच्चे के कान में कान की मशीन या हियरिंग एड लगी हुई है। उस बच्चे से बात करने पर पता चला कि उसे बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, और कान की मशीन लगने पर भी उसे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है और वह बहुत ही कम सुन पाता है। आराधना ने क्लास के सब बच्चों को शांत कराया और फिर उन सब से कहा कि वह उस बच्चे के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना करेगी। आराधना ने, जैसा मुझे कई बार करते देखा था, ठीक उसी तरह से उस बच्चे के कान पर अपने हाथ को रखा और उसके लिए प्रार्थना की। उस लड़के के कान तुरंत खुल गए और उसे सब कुछ साफ साफ सुनाई देने लगा। सभी छात्र चकित रह गए। क्लास खत्म होने के बाद आराधना ने उस लड़के के बड़े भाई से, जो कि उसी विद्यालय में पढ़ता था, बात करी। बड़े भाई ने बताया कि उसका छोटा भाई पूरी तरह से बहरा था। बड़ा भाई भी उस चमत्कार को देखकर चकित रह गया, और उसने आराधना से निवेदन किया कि वह उसके लिए भी प्रार्थना करे, क्योंकि वह पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाता है, उसकी समझ में कुछ नहीं आ पाता है और वह अपनी क्लास में सब बच्चों से पढ़ाई में पीछे है। अतः आराधना ने उसके लिए भी प्रार्थना की। जब बच्चे स्कूल के बाद घरों पर लौटे और घर पर माता पिता ने उनसे पूछा कि आज का दिन स्कूल में तुम्हारा कैसा रहा, तो अधिकतर बच्चों ने कहा, आज का दिन अद्भुत था और आज हमने अजीब बात देखी। हमारी क्लास में एक लड़का बहरा था और टीचर ने उसके लिए प्रार्थना करी और वह लड़का तुरंत चंगाई पाकर सुनने लगा। कुछ माता पिता अगले दिन उस लड़के को देखने, जिसे चंगाई मिली थी, स्कूल पहुंचे। कुछ माता पिता ने आराधना से निवेदन किया कि वह उनकी भी शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करे। जिस लड़के को चंगाई मिली थी उसके बड़े भाई में से 3 सप्ताह के भीतर बड़ा बदलाव सुधार देखा गया और आगे वह अपनी क्लास का सबसे मेघावी और पढ़ाई में सबसे अच्छा छात्र बन गया। चमत्कार करने वाली इस टीचर की खबर सारे गांव और आसपास फैल गई। एक पुरानी पारंपरिक कलिसिया ओल्ड ट्रेडिशनल चर्च में आराधना को प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया गया। इस कलिसिया में वे कभी महिलाओं को बोलने, प्रचार करने का अवसर अनुमति नहीं देते थे, परंतु वे उन अद्भुत गवाहियों को सुनने के इच्छुक थे। आराधना ने उस कलिसिया में ठीक उसी प्रकार से प्रचार और सेवकाई की जैसा कि उसे सिखाया गया था। प्रचार करना शुरू करने से पहले परमेश्वर ने उसे कई ज्ञान के वचन दिए। पवित्र आत्मा ने उसे लोगों के नाम और उसकी विभिन्न अवस्था, समस्याएं भी बताई। सबसे छोटी हिचकिचाहट, संकोच के साथ उन बातों को और अवस्थाओं को बोला जो कि पवित्र आत्मा ने उस पर प्रकट की थी। एक व्यक्ति का नाम उसने बोला और कहा कि इस नाम के व्यक्ति को पेट की समस्या है और उसे सामने बुलाकर उसके लिए प्रार्थना करी। वह व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा और परमेश्वर की सामर्थ्य के नीचे बहुत जोर से कांपने लगा और उसका चश्मा दूर जा गिरा। इसके तुरंत बाद उसकी बीमारी के सभी लक्षण गायब हो गए और उसने गवाही दी। जब आराधना परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रही थी तो उसी व्यक्ति ने पढ़ने के लिए अपनी बाइबल खोली। उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसकी आंखों की रोशनी बढ़ गई है। उसने अपनी आंखों को जांचा, परखा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसकी आंखें अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं और वह बिना चश्मे के भी बाइबल को साफ साफ पढ़ सकता है। कुछ महीनों के बाद जब हम एक नए गांव में सभाएं कर रहे थे, तब उन सभाओं में आराधना भी हमारे साथ जुड़ी। वहां पर सभा में एक 50 वर्ष से अधिक आयु की महिला थी जिन्हें स्तन कैंसर था। इससे पहले उस महिला के दूसरे स्तन में एक ट्यूमर हुआ था जिसे ऑपरेशन करके चिकित्सकों ने निकाल दिया था। अब उसके दूसरे स्तन में भी कैंसर फैल गया था। जैसे ही आराधना ने उस महिला के लिए प्रार्थना की, वह महिला पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के नीचे जमीन पर गिर गई। कुछ समय के बाद जब वह उठी तो ट्यूमर गायब हो चुका था। उन सभाओं का लुफ्त उठाकर वह वापस अपने कार्य पर पहुंची। विद्यालय के एक कमरे की मरम्मत का कार्य चल रहा था। उस कमरे में रंग रोगन पेंट करने के लिए एक पेंटर भी आए हुए थे। चाय के अवकाश के समय आराधना ने उन पेंटरों को चाय दी। उनमें से एक पेंटर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। उसके साथी पेंटर ने आराधना को बताया कि वह तो जन्म से बहरा है। आराधना ने इशारे से बताया कि वह उसके लिए प्रार्थना करना चाहती है और उसके लिए प्रार्थना करी। तुरंत उस पेंटर के कान खुल गए और वह सुनने लगा। सभी पेंटर यह देखकर चकित रह गए। वे सभी मुसलमान थे और जानना चाहते थे कि यह कैसे हुआ। आराधना ने उन्हें समझाया कि वह चमत्कार यीशु ने किया है और उन सभी को नया नियम दिया। वे सभी आदर से झुके और नए नियम की पुस्तक को ग्रहण किया और उन्होंने यीशु के नाम की स्तुति और प्रशंसा की। दोस्तों, इन गवाहियों को पढ़ने के दौरान जो आपकी प्रतिक्रिया है उसे मैं बखूबी समझ सकता हूँ। आप में से कुछ चकित हो रहे होंगे, कुछ असमंजस में होंगे, कुछ उत्सुक एवं उत्साहित होंगे और कुछ संदेह कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये घटनाएं बिल्कुल सही एवं सत्य हैं और ये तो उन बहुत सी गवाहियों में से महज कुछ गिनी चुनी गवाहियां हैं। आराधना के द्वारा प्रभु ने जो कार्य पिछले कुछ वर्षों में प्रकट किए उनमें से ये थोड़े से चमत्कार हैं जिन्हें यहाँ बताया गया है। आराधना ने कभी यह नहीं सोचा था कि इस प्रकार से सेवकाई करने और प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए किसी विशेष अनोखी बुलाहट और वरदान की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह पारंपरिक बात उसे नहीं सिखाई गई थी। उसने तो महज यह विश्वास किया कि यह सब साधारण विश्वासियों के लिए समान सी बात है और प्रभु के लिए सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल होने लगी। जब भी मैं किसी जगह सेवकाई करने के लिए जाता हूँ, किसी न किसी को अपने साथ लेकर जाता हूँ, ताकि मैं उसे भी सिखा और दिखा सकूँ कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में किस तरह से सुसमाचार प्रचार किया जा सकता है। हर एक विश्वासी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा सभी विश्वासियों के अंदर वास करता है। मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक गुंजन नाम का जवान है। वह बहुत जगहों पर मेरे साथ सेवकाई के दौरान रहा है। एक बार हम पंजाब में थे और खुले आसमान के नीचे एक मैदान में हमारी सभाएं चल रही थीं। मैंने गुंजन का उत्साह बढ़ाया और उससे कहा कि वह पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने और विश्वास करे कि प्रभु उसे सामर्थ्य रूप से चमत्कारों के द्वारा इस्तेमाल करेगा। गुंजन निश्चित रूप से चमत्कारों पर विश्वास करता था और उसने मेरे साथ विभिन्न स्थानों पर सेवकाई करने के दौरान बहुत से चमत्कारों को देखा था, परंतु इस बात को लेकर वह आश्वस्त और निश्चित नहीं था। मैंने उसके ऊपर हाथ रखा और विश्वास के साथ अनुग्रह का हस्तांतरण उसके ऊपर किया, ताकि पवित्र आत्मा से उसे सामर्थ और वरदान प्राप्त हो। कुछ क्षणों में उसने एक दर्शन देखा और उस दर्शन में एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कि बाईं आंख से अंधा था और नहीं देख सकता था। बड़े उत्साह के साथ मैंने उससे कहा कि यह जो ज्ञान का वचन परमेश्वर ने उसे दिया है, उसे वहाँ मौजूद लोगों को मंच पर से बताए। वह थोड़ा हिचकिचा रहा था और असमंजस में था कि क्या यह परमेश्वर की ओर से ही प्रकट हुआ है। दोस्तों, हमें लोगों को मौका देना चाहिए कि वे बिना किसी शर्म और असफलता के, भय के, विश्वास का एक कदम बढ़ाएं। मैंने उसे मंच पर से इस बात को बताने के लिए मजबूर कर दिया और गुंजन ने वह ज्ञान का वचन लोगों को बताया जो परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया था। भीड़ में पीछे खड़े एक बूढ़े व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि यह मेरी अवस्था के बारे में आप बोल रहे हैं। उसकी बाईं आंख से उसे दिखाई नहीं देता था। गुंजन आश्चर्य के साथ मेरी ओर मुड़कर देखने लगा। वह उत्साह और आश्चर्य से भरा दिखाई पड़ रहा था। वह मुझसे उम्मीद कर रहा था कि मैं जाकर उस व्यक्ति की चंगाई के लिए प्रार्थना करूं, परंतु मैंने उसे निर्देश दिया कि वह उस ज्ञान के वचन के अनुसार उस व्यक्ति के लिए चंगाई की घोषणा करते हुए उसके लिए प्रार्थना करे। गुंजन ने मेरे कहे अनुसार किया और कुछ ही क्षणों में उस व्यक्ति की आँख खुल गई और वह साफ साफ देखने लगा। यह सभा रात को हो रही थी जब सूरज पूरी तरह से डूब चुका था, परंतु वहाँ उस कम रोशनी में भी वह बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल साफ साफ देख पा रहा था। वहाँ मौजूद भीड़ आनंदित होने लगी और बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। पीपे का तल, सबसे निचला स्तर। जिस प्रकार की सेवकाई के बारे में मैंने आपको बताया कि ठीक उसके विपरीत उलट कलीसिया ने इस प्रकार से सेवकाई करने का आदेश, अनुमति कुछ गिने चुने लोगों को दे रखा है और आत्मिक लाल फीताशाही, स्पिरिचुअल रेड टेप कलीसिया में आ घुसी है, जिसके बहुत से कठिन नियम और कानून हैं जो कि साधारण विश्वासियों को प्रभु के लिए इस्तेमाल होने से रोकते और हतोत्साहित करते हैं। आज की दुनिया में विश्वासी को तुच्छ समझा जाता है। आज की मसीही संस्कृति में विश्वासी का अर्थ है एक साधारण जन जिसको केवल यह प्रयास करना चाहिए कि कैसे वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश करके अनंत जीवन को प्राप्त कर ले। वह एक ऐसा जन है जो अभिषिक्त नहीं है। विशेष सेवकाई की बुलाहट वाले लोगों से वह अलग है। वह आत्मिकता के शुरुआती स्तर या पायदान पर समझा या माना जाता है और कलीसिया में मौजूद तो रहता है, परंतु कलीसिया में क्रियाशील, एक्टिव नहीं रहता है। कुछ विश्लेषणों का इस्तेमाल करके विश्वासी का सकारात्मक वर्णन कर दिया जाता है, जैसे कि आज्ञाकारी विश्वासी, उदार विश्वासी, दान देने वाला विश्वासी या फिर समर्पित विश्वासी। यह एक मामूली सा परिचय बदलकर अधिक प्रभावशाली और महत्व वाला परिचय होना चाहिए, और जैसे कि आराधना, अगुआ, वर्शिप लीडर, प्रार्थना वाला सेवक, प्रेयर मिनिस्टर, सलाहकार, काउंसलर, उपशिक्षक या भेंट कराने वाला अशर, डिकन, प्राचीन एल्डर, पास्टर, प्रचारक आदि। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अगुए लीडर्स प्रायः अपने आप को महज विश्वासी कहकर कभी भी संबोधित नहीं करते हैं? दुनिया भर में मेरा जाना होता है और मैंने यह बात सभी जगह पर देखी है। विशेष सौभाग्य और पदवी। दोस्तों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह जो आधुनिक परिभाषा है सर्वदा गलत है। विश्वासी होने का सौभाग्य सबसे महान सौभाग्य है और एक विश्वासी की पदवी सबसे ऊंची पदवी है जो कि कोई भी हासिल कर सकता है। यही हमारे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का मूल है और विश्वासी होने के आधार पर ही हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा विरासत में प्राप्त होता है। यह जो हमारा परिचय है एक अनंत परिचय है और परमेश्वर के महानतम वायदे प्रतिज्ञाएं इसी परिचय के आधार पर हमें मिलती या हासिल होती है। 5 प्रकार की सेवकाई और आत्मिक वरदान अस्थाई है, 1 कुरिन्थियों 13:8-10। परंतु विश्वासी और पुत्र बेटा होने का अधिकार अनंत और स्थाई है। स्वर्ग में भविष्यवक्ताओं या नबियों, सुसमाचार प्रचारकों और पास्टरों की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम सब वहां पूर्णतः भरपूरी में चमकेंगे और अपने भले और प्रेम करने वाले पिता की मौजूदगी या उपस्थिति में उसके सिद्ध पुत्र और पुत्रियां होंगे। नीचे दिए गए दोनों लेखा चित्रों पर ध्यान दें और दोनों की तुलना करें। विश्वासी, जिसका स्तर कम है, वरदान प्राप्त सेवक, जिनका स्तर उससे थोड़ा अधिक है, विशेष बुलाहट वाला सेवक, जिसका स्तर उससे बहुत ऊंचा है। पहला चित्र, ये गलत सोच है। यह कि विश्वासी बिल्कुल शुरुआती स्तर है। विश्वासी ज्यादा प्रभावशाली और महत्वपूर्ण नहीं होता है। वरदान प्राप्त सेवक का स्तर अधिक ऊंचा होता है और विशेष बुलाहट वाला सेवक उससे भी ऊंचा और महत्वपूर्ण होता है। यह गलत सोच कि जिसके पास विशेष वरदान और बुलाहट है अधिक महत्वपूर्ण है। वरदान, विशेष बुलाहट, विश्वासी या पुत्र होने का हक। विशेष बुलाहट अस्थाई, विश्वासी पुत्र होने का हक स्थाई और अनंत। दूसरा चित्र, सच्चाई। विश्वासी होने के कारण हम मूल्यवान और प्रभावशाली हैं। हम इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में पुत्र और पुत्रियां हैं। हमारे वरदान और बुलाहट इस नींव या बुनियाद पर निर्भर करती है। वह बुनियाद विश्वासी या पुत्र होना है और हम विश्वास और सुरक्षा में पुत्रत्व अर्थात बेटेपन में बढ़ते जाते हैं। सुसमाचार प्रचार करने, बीमारों को चंगा करने और दुष्टात्माओं को निकालने का जो आदेश आपको मिला है वह आदेश सभी मसीही विश्वासियों के लिए भी है। यह आदेश केवल 5 प्रकार की सेवा करने वाले कुछ विशिष्ट लोगों तक सीमित नहीं है। 5 प्रकार की सेवकाई करने वाले चाहे पास्टर हों, शिक्षक हों, प्रेरित आदि क्यों ना हों, सभी को ये काम करने चाहिए, क्योंकि आखिरी बुनियादी तौर पर देखा जाए तो सभी सबसे पहले विश्वासी हैं। सुसमाचार प्रचारक को भी सुसमाचार प्रचारक करने का आदेश एक विश्वासी होने के कारण ही दिया गया है। एक सुसमाचार प्रचार का कार्य केवल इतना ही नहीं होता कि सुसमाचार प्रचार करे, परंतु उसका कार्य और जिम्मेदारी यह भी होती है कि वह लोगों को सिखाए, एक नमूना बनकर दिखाए, लोगों को उभारे, प्रोत्साहित करे और उन्हें सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार करे और सशक्त बनाए। आत्मा के मंदिर। विश्वासी बनने के कारण ही आपको एक महानतम अनंत पहचान मिलती है। आप जीवित परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। उस पर विश्वास करने के कारण आप उसके पुत्र पुत्रियां बन गए हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, 1:12। क्योंकि आप उसके बेटे बेटियां हो, उस कारण आपको सबसे महान खजाना पवित्र आत्मा मिला है। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। 4:6। हम उस अभिषेक पर जो कि किसी अगुवे पर पाया जाता है बहुत जोर या महत्व देते हैं, परंतु अक्सर उस अभिषेक के सोत्र पवित्र आत्मा को नज़रअंदाज कर देते हैं जो कि हर एक विश्वासी के अंदर पाया जाता है। हम अपना ध्यान किसी भी मशहूर सेवक के वरदानों पर ज़्यादा लगाते हैं, परंतु उस वरदान को देने वाले पवित्र आत्मा को नज़रअंदाज कर देते हैं जो कि सभी विश्वासियों के अंदर रहता या वास करता है। कुछ लोगों के लिए बाइबल कॉलेज की धर्म विज्ञान की उपलब्धि थियोलॉजिकल डिग्री या फिर किसी बड़े भविष्यवक्ता नबी के द्वारा कहा गया नबुवत का वचन किसी को भी सेवकाई के लिए योग्य उपयुक्त ठहराने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ना कि यह बात कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम निश्चित रूप से उसके कारण सेवकाई करने के योग्य ठहरते हैं, ना कि किसी धर्म विज्ञान की उपाधि या डिग्री फिर किसी नबी द्वारा की गई भविष्यवाणी के कारण। हम सेवकाई के लिए योग्य ठहरते हैं। हमने सबसे महान वरदान अर्थात पवित्र आत्मा को सबसे कम महत्व दिया है और इस हकीकत को नज़रअंदाज किया है कि पवित्र आत्मा जो सबसे महान वरदान और खजाना है वह हमारे अंदर पाया जाता है। ऐसा करने के द्वारा शैतान ने हमें धोखा दिया है और हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य प्राप्त से वंचित किया रखा है। यह वही पवित्र आत्मा है जो कि यीशु के द्वारा सामर्थी रूप से कार्य करता था, लूका 4:18-19, और इसी आत्मा ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, रोमियो 8:11। वही आत्मा सभी विश्वासियों को इसलिए दिया गया है ताकि हम में से जीवन जल की नदियां, बीमारों को चंगाई देने, दबे हुओं को छुटकारा देने और सभी राष्ट्रों देशों में परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करते हुए सुसमाचार प्रचार करने के लिए बह निकले। यूहन्ना 7:38-39, मरकुस 16:20, 1 थिस्सलुनीकियों 1:5, 1 कुरिन्थियों 2:4-5। दोस्तों, जब हम वरदान को वरदान देने वाले से अधिक महत्व देते हैं तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे होते हैं। वही हर प्रकार के अभिषेक का स्रोत है। जब उसकी उपस्थिति आपके अंदर पाई जाती है तो सामर्थ्य के साथ सुसमाचार प्रचार करने के लिए आप सुसज्जित, सक्षम, योग्य और तैयार हैं। अब और किस चीज़ का इंतज़ार है आपको? मैंने हर एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा के महत्व पर जोर दिया और ऐसा करने पर जो परिणाम देखने को मिले उसको देखकर मैं दंग रह गया कि जब पवित्र आत्मा को महत्व दिया गया तो पवित्र आत्मा ने अद्भुत रूप से उन्हें सामर्थी और सशक्त बना कर इस्तेमाल किया। पंजाब के पूर्वी इलाके में एक गांव में मेरा जाना हुआ। वहां सभाओं में लगभग 200 लोग इकट्ठा थे, जिसमें से ज़्यादातर नए विश्वासी थे जो कि कुछ महीने पहले ही प्रभु पर विश्वास लाए थे और उनमें से कुछ ऐसे थे जो कि कुछ साल पहले ही प्रभु में आए थे। मैंने इसी संदेश के द्वारा उन्हें उभारा। पहले मैंने उन्हें यह भरोसा दिलाया कि उनके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है और इस बात के प्रति आश्वस्त करने के बाद मैंने जन समूह भीड़ में मौजूद बीमार, दुर्बल और अपाहिज या विकलांग लोगों से हाथ ऊपर उठाने को कहा और इन साधारण विश्वासियों के पास उन बीमार लोगों को अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना कराने के लिए भेजा। इसके परिणाम चकित कर देने वाले थे। हर एक उस व्यक्ति ने चंगाई पाई जिसने अपने लिए प्रार्थना कराई थी। कई किशोर और युवा जो कि जन्म से बहरे थे उन्हें तुरंत चंगाई मिली और उन्हें तुरंत सुनाई देने लगा। कई लोग जो बीमारी और दर्द से पीड़ित थे उन्हें बीमारी और दर्द से तुरंत छुटकारा मिला। यह सब किसी विशेष अभिषिक्त भविष्यवक्ता या नबी, मशहूर प्रेरित या प्रचारक की प्रार्थनाओं से नहीं हुआ और ना ही मैं हर एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कर रहा था, परंतु यह सब परिणाम था साधारण विश्वासियों के द्वारा इस बात को जान लेने का कि यीशु मसीह में यदि वे हैं तो वे कितने महान, और यीशु ने उन सभी को महान और बड़े बड़े काम करने के लिए चुना है। जिन नए विश्वासियों को मैं प्रशिक्षण देता एवं तैयार करता हूँ, वे यदि ज्ञान के वचन को हासिल कर पाते हैं, भविष्यवाणी कर पाते हैं, बीमारों को चंगा कर पाते हैं और चमत्कार कर पाते हैं, तो इस कारण क्योंकि वे पवित्र आत्मा के पात्र या बर्तन हैं और पवित्र आत्मा उनके अंदर वास करता है। मैंने ऐसे लोगों को लिया जिन्हें यीशु पर विश्वास लाए हुए महज 2 हफ्ते ही बीते थे और मैंने तुरंत उन्हें सिखाना आरंभ कर दिया कि पवित्र आत्मा की आवाज़ को कैसे सुना जाए और किस तरह से वे सामर्थी रूप से चिन्ह और चमत्कारों के साथ सेवकाई कर सकते हैं। धर्म कलीसिया को आगे बढ़ने से रोके हुए हैं और कलीसिया के आगे ना बढ़ पाने का कारण वे अगुवे भी हैं जो कि कलीसिया की काबिलियत या ताकत या क्षमता को समझ पाने में असफल रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि वह हजारों हजार लोग पाप में नाश हो रहे हैं और बीमारियों और दुष्ट आत्माएं लोगों को बेवजह सता रही हैं। दोस्तों, हमें कलीसिया को तैयार करने और सेवकाई के लिए सशक्त बनने को ही अपना लक्ष्य और मकसद बना लेना चाहिए। स्पष्टीकरण। जैसा कि मैंने बताया कि हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा ने स्वयं पूरी तरह से सेवकाई करने के लिए तैयार और सुसज्जित किया और सशक्त बनाया है, तो फिर क्या हर एक विश्वासी को चर्च इमारत बनवाकर पारंपरिक तरीके से अपनी अपनी सेवकाई अलग अलग शुरू कर देनी चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि हर एक विश्वासी बड़े जोश और लगन के साथ सुसमाचार प्रचार कर रहा होता और सामर्थ्य के साथ प्रार्थना कर रहा होता, तो फिर ऑल्टर कॉल की स्थानीय कलीसिया में जरूरत ही नहीं पड़ती और ना ही पास्टर को कोई अस्पताल जाना पड़ता। हर एक विश्वासी को तैयार और सशक्त बनाए जाना चाहिए उसके अपने प्रभाव के क्षेत्र में, जहां लोग उसकी सुनते हैं, अपने जान पहचान वालों के बीच और अपने कार्यस्थल में जहां वह अपने सहकर्मियों के बीच काम करता और समय बिताता है। जरा निम्नलिखित कार्यस्थल और उसके प्रभाव क्षेत्रों पर ध्यान देते हैं और वहां पर साधारण विश्वासी जन किन किन लोगों तक सुसमाचार पहुँचा सकते हैं। नौसेना का कप्तान, गायक, घर पर रहने वाले बच्चों की माँ, आयुक्त, बावर्ची, दूसरे देश में सेवा करने वाला सेवक, अस्पताल की नर्स, आईटी प्रोफेशनल, बैंक कैशियर और रिटेल मैनेजर। पहला कुरिन्थियों उसका 12:12-26 में पौलुस के द्वारा दी गई शिक्षा की कुछ लोगों ने गलत ढंग से व्याख्या कर ली है और उस गलत व्याख्या के आधार पर वे समझते हैं कि कुछ लोगों को दूसरों से अधिक सामर्थी, महान अभिषेक और वरदान प्राप्त है। मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि वचन के ये पद जो पौलुस की शिक्षा में हैं, किसी भी तरह से यहाँ इस पुस्तक में जो कुछ मैंने अभी तक सिखाया है उसे किसी भी तरह से ना खारिज करते हैं और ना गलत ठहराते हैं। यहाँ इन पदों में प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि कुछ लोगों को उनके प्रभाव के क्षेत्र के कारण दूसरों से अधिक आदर सम्मान मिलता दिखाई देता है। जो व्यक्ति जहाज का कप्तान है या जो विदेश में मिशनरी का काम कर रहा है, उन्हें उनके प्रभाव के क्षेत्र के कारण, क्योंकि उनका प्रभाव का क्षेत्र ज़्यादा बड़ा फैला हुआ और व्यापक है, उन्हें उस महिला से अधिक आदर और सम्मान मिलता दिखाई देगा जो कि घर पर रहकर अपने बच्चों की देखभाल करती है। लेकिन इसका मतलब यह कदाचित नहीं है कि घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करने वाली महिला किसी भी मायने में कम अभिषिक्त है या फिर उसका अधिकार का क्षेत्र कम महत्वपूर्ण है। वह उन बच्चों पर अपना प्रभाव डाल रही है जो उसकी देखरेख में बड़े हो रहे हैं। कई जगहों पर विभिन्न परिवेशों में यह देखा गया है कि जो महिलाएँ घर पर ही रहकर घर का कामकाज करती हैं, उन्होंने अपने प्रभाव का सही इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रों, देशों को बदल दिया है या बदल रही हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कलीसिया रोपण आंदोलन, चर्च प्लांटिंग मूवमेंट जो कि इन दिनों ईरान में चल रहा है, उसके बारे में बताया था। यह बड़ा काम जो प्रभु ईरान में कर रहे हैं, वहाँ ज़्यादातर घरेलू महिलाएँ ही अगुवाई कर रही हैं। दोस्तों, उठ खड़े हों और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सुसमाचार की रोशनी को जलाएं। यह आपकी मंजिल है, यह आपको स्वामी के द्वारा दिया गया आदेश है और यह आपको मिला हुआ सुनहरा मौका है। और जब आप चमकते हैं तो आपका मकसद और इच्छा दूसरों को सेवकाई के कार्य के लिए प्रशिक्षित और तैयार करने का होना चाहिए। सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से पूछे जाने वाले और ध्यान देने वाले व्यवहारिक प्रश्न, 5 प्रकार की सेवकाई करने वाले सेवकों के लिए। इस अध्याय को पढ़ने से पहले अपने आप और दूसरों को लेकर आपका नज़रिया क्या ज़्यादा पुराने नियम वाला था या फिर नए नियम वाला? यदि आपके नज़रिए में कुछ बदलाव हुआ है तो वो क्या है जो आप समझते हैं कि नए नियम के नज़रिए के अनुसार होना या बदलना चाहिए? दूसरा, इस अध्याय को पढ़ने से पहले आप अपने आप को विश्वासी के रूप में किस प्रकार देखते थे? क्या आपका नज़रिया बदला है? यदि हाँ, तो आप इसके द्वारा दूसरों को तैयार करने और सशक्त बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित हुए या उभारे गए? तीसरा, क्या आपकी सामर्थ्य के साथ सुसमाचार प्रचार करने की अपेक्षा, आशा या उम्मीद केवल 5 प्रकार की विशिष्ट सेवकाई तक ही सीमित थी, जैसे कि शिक्षक, सिखाने वाले या पास्टर तक ही बने रहना? और क्या आपने अपने आप को बड़ी सामर्थ्य और चिन्ह चमत्कारों के साथ सुसमाचार प्रचार करने के लिए अभिषिक्त के रूप में कभी नहीं देखा था, क्योंकि आप सुसमाचार प्रचारक या भविष्यवाणी नबी नहीं हैं? चौथा, इस पुस्तक को पढ़ने से पहले क्या आप आश्वस्त थे कि परमेश्वर आपको लोगों की चंगाई और छुटकारे के लिए इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर से इसकी उम्मीद लगाए हुए थे। विश्वासी की सेवकाई के लिए तैयार और सशक्त बनाए जाने के इस सोच ने किस प्रकार से आपके आत्मविश्वास को बढ़ाया और सामर्थी और अलौकिक रूप से प्रभु के लिए इस्तेमाल होने की उम्मीद आपके अंदर जगाई है। पांचवा, क्या आपने अपनी कलीसिया के विश्वासियों को बखूबी सिखाया है कि मसीह में वे कौन हैं, वे क्या कर सकते हैं और वे कितने योग्य और समर्थ हैं मसीह में होने के कारण? इस अध्याय ने किस प्रकार से उनकी योग्यता काबिलियत को लेकर आपकी सोच और नजरिए को बदला है? छठवां, क्या आप विश्वास करते हैं कि मसीह की देह अर्थात कलीसिया को सुसमाचार प्रचार करने और चंगाई और चमत्कारों के लिए विश्वास करने के लिए प्रेरित करना, उभारना और तैयार करना, सशक्त बनाना अब आपके लिए आसान होगा? यदि नहीं तो क्यों? कौन से रुकावटें हैं जो उन्हें तैयार होने, सशक्त बनाने से रोकती हैं और आप इन रुकावटों को दूर करने के लिए या उन पर विजयी होने के लिए क्या करेंगे? साधारण विश्वासियों के लिए सवाल। पहला, इस अध्याय को पढ़ने से पहले क्या आपने कभी ये सोचा था कि आप याजक, भविष्यवक्ता और राजा हैं? प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन में परमेश्वर के लिए सामने याजक, भविष्यवक्ता और राजा बनना कैसा होता है? दूसरा, इस अध्याय को पढ़ने से पहले क्या आप यीशु मसीह की तरह बनने से ज़्यादा इच्छुक पुराने नियम के किसी भविष्यवक्ता या नबी के जैसे बनने में थे? यीशु के समान बनना पुराने नियम के भविष्यवक्ता या नबी, याजक और राजा बनने से अलग कैसे और किन मायनों में है? तीसरा, आपको सुसमाचार प्रचार करने, बीमारों को चंगा करने और दुष्टात्माओं को निकालने का पूरा आदेश मिला है। क्या यह बात आपको उत्साहित करती है या फिर आपको डराती है? क्यों? यीशु के इस आदेश का पालन करने और सेवकाई की तैयारी करने के लिए आप कौन से व्यवहारिक कदम उठाने जा रहे हैं? चौथा, इस हकीकत या वास्तविकता को आप कितना जानते हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता या रहता है? पवित्र आत्मा का आपके अंदर वास करने के क्या मायने हैं और सुसमाचार को सामर्थ के साथ प्रचार करने के लिए क्या मायने हैं? क्या उसकी उपस्थिति, उसके आदेश का पालन करने और उसके लिए तैयार होने के लिए आपको आश्वस्त करने के लिए काफ़ी या पर्याप्त है, या फिर आप किसी और चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? पांचवा, समाज में आपका पेशा क्या है और कौन कौन लोग आपके प्रभाव के क्षेत्र में आते हैं जिन पर आप अपना प्रभाव डाल सकते हैं? कौन से व्यवहारिक तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने प्रभाव के क्षेत्र में आने वालों को सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर चमत्कार प्रकट करेगा?